الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر وزر سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر چلے. وزر سامعین کرام بنی اسرائیل کے واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے جو قرآن کریم نے یہاں بیان فرمایا ہے اور یہ بنیادی بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے اور جس پر توجہ رہنی چاہیے کہ وہ جو مقصد ہے وہ فوت نہ ہو. بالعموم جب واقعات قرآن کریم سے ہم سنتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سنتے ہیں تو وہ حصے جو متعلقہ نہیں ہوتے اس پر ہماری بحث چلی جاتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو حصہ متعلقہ ہیں اس پر اپنی رہنمائی جو ہے اس پیرائے میں اس واقعے کو دیکھا جائے. مثلا مثال کے طور پر جیسے یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر چلے تو یہاں حضرت طالوت کے حوالے سے مفسرین کرام اللہ کا نبی ہونا بھی بیان فرماتے ہیں اور اشارہ جو ہے وہ آپ کی جہاں قرآن کریم نے آپ کو فی العلم کے علم کے حوالے سے اللہ کریم نے جو عطا فرمایا اس حصے میں بھی بیان فرماتے ہیں اور نہیں بھی بیان فرماتے کہ اس میں واللہ عالم کے حصے سے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. مقصد یا نقطہ جو پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح مزید جب لشکر کی روانگی کی بات آتی ہے چونکہ واقعہ کچھ یوں ہے جو پچھلے بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا لیکن بات کی تاکہ ایک تسلسل رہے اور آج کے سامنے کو وہ تسلسل میسر آئے تو بنی اسرائیل کے واقعات میں سے یہ واقعہ ایسا ہے کہ جب وہ لوگ دین سے دور ہو گئے اور خواہشات ذاتی کی پیروی میں لگ گئے تو ایسی آزمائش آ گئی کہ قوم امال کا انہوں نے حملہ کیا. اس وقت ان کے بادشاہ کا نام جو مفسرین کرام روایات میں بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ بخت نصر اس کا نام تھا. اس نے ہر شے کو تخت و تاراج کر دیا, قتل و غارت کی, بچے بیویاں کوئی لحاظ نہیں کیا, جو اس کے آگے اس نے قتل کیا, جسے غلام بنا سکا غلام بنایا, عبادت خانے تباہ کر دیے. اور جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب سامان تھا اسے بھی اٹھا کر لے گئے, جو صندوق تھا اسے بھی اٹھا کر لے گئے. تو کچھ وقت گزرا اس تنگی تکلیف میں, اللہ کریم نے مہربانی فرمائی, اپنے نبی مبعوث فرمائے اور روایات میں جو ان کا نام آتا ہے اس میں مختلف نام بیان فرمائے جاتے ہیں. تو ایک نام مبارک جو ہے وہ حضرت شمائل علیہ السلام بھی جو ہے لکھا جاتا ہے. لیکن پھر وہی بات جو ابتدان میں نے عرض کی کہ یہاں ہم اگر آپ کے مبارک نام کی طرف جائیں گے تو پھر وہ بات ہے جو ہمارے لیے جہاں بیان فرمائی جا رہی ہے اس سے ہم تجاوز میں جا رہے ہیں. تو انہوں نے جب اس قوم کی تربیت کی انہیں احساس ہوا, جب دین کی طرف عمل آتا ہے نا تو پھر احساس جو ہے وہ سلامت ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو انہیں احساس نصیب ہوا کہ ہم نے کیا کیا, بدعمالیوں کے سبب ہم نے اپنے گھر اپنے آبادیاں قوم عبادت خانہ ہر شے تباہ کرا دی. تو جہاں انہوں نے دینی پہلوؤں میں تربیت لی وہاں انہوں نے اپنے نبی سے یہ بھی عرض کیا کہ آپ ہمارے درمیان نظم قائم فرما دیں, ہمیں ایک بادشاہ مقرر کر دیں جو ہماری رہنمائی کرے اور جس کی رہنمائی میں جس کے حکم کے تحت ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور جو ہمارا نقصان ہوا ہے اسے ہم واپس لیں. تو پھر اس موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ انہیں مقرر فرمایا جائے. اس میں جب پھر اعتراض کیا گیا کہ یہ تو وہ خاندان ہونا چاہیے جس میں بادشاہی آ رہی ہے یا صاحب حیثیت ہونا چاہیے, تو ان کے حصے میں اگر دیکھیں تو مفلسی ہے اور वो हैसियत खानदानी जो रुसा में है या बादशाही का नज्म है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इन्हें आप हम पर बादशाह जो है वो मुकर्रर फरमा दें। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह करीम ने उन्हें इल्म और जिस्म दोनों पहलुओं में जो है अल्लाह करीम ने बेशुमार हिस्से अता फरमाए और तुमसे ज़ायद अता फरमाए हैं, कुशायदगी है। और ये यहाँ इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह करीम ने तुम पर कैसे पसंद फरमाया, قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطته في العلم والجسم, कि अल्लाह करीम का एहसान। फिर मैंने यहाँ ये बात भी अर्ज की थी कि जो जिसे हुकूमत मिले या जो हुक्मरान हो उसमें उसके लिए कुरान करीम ने कैसी खसूसियात बयान फरमाई। तो फिर उनका एतराज के सारे के साथ कुछ ताईदे इज्दी भी हमें दिखाई जाए ताकि हमें ये हमारे दिल मजबूत हों कि वाकई ये फैसला जो है दुरुस्त है। तो उस पर जो संदूक है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, उससे मुतल्लिक इरशाद फरमाया गया कि फरिश्ते उसे तुम्हारे पास पहुंचा दें। तो कौम अमालका जब ये लूट मार करके चली गई तो वो जहां संदूक रखते थे वहां तबाही पैदा हो जाती थी, कोई ना कोई मामला ऐसा होता, संदूक सलामत रहता, बाकी गिर्दोपेश जो है वो तबाही होती, घर है, आबादियां हैं, मुख्तलिफ रवायात। तो मजहबी पेशरो ने कि इस संदूक से छुटकारा हासिल, तो रवायत में दराश गोश भी आता है, ये भी आता है कि बैलगाड़ी थी उस पर उन्होंने लादा और उसे अपनी आबादियों से दूर हाँक दी। तो अल्लाह करीम के फरिश्ते उन्हें फिर यहाँ इस मौके पर हजरत तालूत के पास हाँकते हुए ले आए। तो यहाँ अगली आया करीमा में यही हिस्सा बयान फरमाया गया। अब उस संदूक की आमद से तस्कीन कुरान करीम बयान फरमाता है, तो ये तस्कीन जो है ये जाहिर से बातनी पहलुओं तक जो है असरअंदाज होती है कि उन्हें ये भी समझ आई कि इसे ताईद इस हुक्म को ताईद इज्दी हासिल है। हालां पहले भी जो फरमाया गया वो अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई अमूमी बात या मजलिस के मशवरे की बात नहीं थी, अल्लाह का नबी जो बयान फरमाता है वो अल्लाह का हुक्म होता है यकीनी तौर पर। लेकिन ये कमजोरी होती है, जैसे आज हम बहसियत उम्मती दीन इस्लाम को मानते हैं, अल्लाह रसूल को मानते हैं, ये अल्लाह का एहसान है कि हमारा हमें ईमान नसीब। लेकिन जब हम आमाल को देखते हैं तो इबादात में भी कमजोरी है, आमाल में उससे ज्यादा कमजोरी मिलती है। तो हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो हुक्म या जो तालीम हमें अता फरमाई है उसमें जिंदगी का कोई बहर ऐसा नहीं है कि जिसमें तशनगी हो। तो इसी तरह मान रही हैं लेकिन फिर कह रहे हैं कोई ऐसा हिस्सा हो जिससे हमें मजीद तस्कीन मिले, हमें तसल्ली मिले। तो वो संदूक बेइज़्निल्लाह हजरत तालूत के पास पहुंचा। तो फिर जब वो पहुंचा तो उसके बाद फिर लश्कर तैयार हुआ कि हम जालूत के मुकाबले में लश्कर तैयार करते हैं, क्योंकि उस वक़्त तक जो कौम अमालका का बादशाह था वो उसका नाम उस वक़्त के जो हुक्मरान था उसका नाम जालूत था, और वो भी बड़ा मशहूर था कि जंगजू भी है, बड़ा जालिम भी है और खुद अपने लश्कर के साथ जो है अगली सफों में लड़ता है। तो फिर यहाँ जो आज मैंने तलावत करने की शहादत हासिल की है इसमें जो इरशाद फरमाया जा रहा है, फिर जब तालूत लश्करों को लेकर चले तो ये वो मौका आया कि जब आबादी इकट्ठी हुई कि हाँ अब हमारा हुक्मरान भी तय हो गया, हमने अपनी राह का तयन भी कर लिया है, हमारे पास ताईद इज्दी भी आ गई है, तो अब जो वो जिम्मा हमारा है कि हम अल्लाह की रजा के लिए जहाद में जाएं, हम वहां जहाद में जाएं और जो अपना नुकसान है उसका अजाला भी करें, अल्लाह की रजा के लिए कुफार से लड़ें भी। तो उस मौके पर यह हिस्सा इरशाद फरमाया जा रहा है, काला इन अल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, फरमाया बेशक अल्लाह तुमको नहर से आजमाएंगे। अब यहाँ मुफसरीन कराम जो हैं वो दो हिस्सों में बयान फरमाते हैं, एक हिस्सा ये भी बयान फरमाते हैं कि चूंकि मौसम गर्मी का है और सख्त गर्मी थी, अब जिस इलाके की बात फरमाई जा रही है इलाका सहरा ही है, तो इस सहरा में जब गर्मी की बात आए तो कई गुना गर्मी बढ़ जाती है, तो यकीनन गर्मी के साथ प्यास की बात आएगी। तो नहर से आजमाया गया, इस फरमान को अल्लाह के नबी की तरफ भी बयान फरमाया जाता है और हजरत तालूत की तरफ भी बयान फरमाया जाता है। लेकिन ये यकीनी बात है कि लश्कर वालों को ये बता दिया गया कि तुम्हें नहर से आजमाया गया। अब इसमें मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं, ऐसी भी मिलती हैं कि कि नहर के लिए दुआ की गई कि अल्लाह से दुआ करें कि कोई पानी की नहर आ जाए जिससे इस गर्मी में हम अपनी प्यास बुझा सकें। और रास्ते की जो उस इलाके की नहर है अगर उसकी भी बात की जाए तो भी मामला जो है उसमें नहर पर इम्तिहान से मुतल्लिक है। क़ाला इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिन्नहर, तो फरमाया बेशक अल्लाह तुमको नहर से आजमाएंगे। फमन शारिबा मिन्हु फलैस मिन्नी, फिर जो उसमें से पी लेगा तो वो मेरे साथियों में नहीं। अब नहर का पानी पीना, इसे अगर आप देखें तो ये इबादात के पहलुओं में आप इसे नहीं समझ पाएंगे, इसे मामलात के पहलुओं में भी नहीं समझ पाएंगे कि जो रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात हैं ये उससे हटकर मामला है। लेकिन एक बात जो वाजे होती है वो ये होती है कि हर हाल में हुक्म अल्लाह का माना जाए, उसके मानने में जो मुतजब्जब होना है ये शर्फ नहीं है इंसान का कि बहसियत मुसलमान वो मुतजब्जब हो। आज हम अपनी जिंदगी के मामलात में देखते हैं, इबादात मामलात के एक एक पहलू में देखें, जो हमारी जरूरत है वो हुक्म दिया गया है और उस हुक्म की इख्तियार करने में हम मुतजब्जब होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो मामला हो जो मुझे पसंद है। ये भी जानते हैं कि मेरी पसंद नुकसानदेह है, अल्लाह करीम की जो पसंद और हुक्म है उसमें जहां अल्लाह के हुक्म की तामील है वहां मेरी फलाह भी उसी में, ये भी हम जानते होते हैं, उसके बावजूद ऐसे नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे होते। तो यहां जब फरमाया गया कि नहर से आजमाया जाएगा तो इसमें बेशुमार राज पना होंगे। ये भी मुमकिन है कि जब कोई मौका आता है तो बेशुमार लोग उठ खड़े होते हैं, ये जरूरी नहीं होता कि वो जो एक लश्कर पूरा उठ खड़ा हुआ है उसमें सारे सब जो लोग शामिल हैं वो वाकईतन जिस मकसद के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं वो चाहते भी हों। मुनाफ़क़त भी हो सकती है, देखा देखी भी हो सकती है, ऐसे शोर गोगा का हिस्सा भी हुआ जा सकता है। तो जब आजमाइश आएगी तो आजमाइश मामला कठिन होता है और कठिन मामले से जब गुजरा जाए तो फिर अमूमी बात नहीं रहती। जो मकसद को देख कर चल रहे होते हैं फिर रह वो जाते हैं, जो शुगलन शामिल होते हैं फिर वो सारे जो है वो लोग रास्ते में रुक जाते हैं। लेकिन जो हिस्सा फरमाया गया काला इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिन्नहर, कि बेशक अल्लाह तुमको नहर से आजमाएंगे, अब ये एक आजमाइश है और अल्लाह की तरफ बयान फरमाई गई। ये नहीं फरमाया गया कि अगर नहर के पानी की आजमाइश आए तो ये ख्याल रखना क्या पता अल्लाह की तरफ से आजमाइश, ये नहीं फरमाया, बड़ा वाज़े फरमाया। तो इस तरह जब अल्लाह के नबी पर जब ईमान है उसमें किसी दर्जे की कोई कमजोरी जो है वो न हो तो ही ये बातें समझ आती। अब हम इकरार करते हैं लेकिन हमारे आमाल हमारे इस इकरार की शहादत नहीं देते, तो यहां फिर ये गुमान पैदा हो जाता है कि क्या हमारा मानना जो है वो भी मानने के मानों में दाखिल है कि नहीं है। वो गफूर रहीम है, हम कमजोर गुनाहगार हम पर रहम फरमाए। लेकिन जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं इससे मुराद इस नजाकत को समझना है कि मानना और उस मानने के साथ शहादत की अमल का न होना ये कोई अमूमी बात नहीं है, ये बड़ा नाजुक मामला हो जाता है। तो जब नहर से आजमाइश की बात आई तो मजीद कुरान करीम में फरमाया गया फमन शारिबा मिन्हु फलैस मिन्नी, इसमें से जो पी लेगा वो मेरे साथियों में नहीं होगा। हुक्म अल्लाह का है, अल्लाह के नबी हैं और दीन की सरबुलंदी के लिए जा रहे हैं, जहाद फी सबीलल्लाह का मामला है, कुफर के मुकाबले जा रहे हैं। और जो अल्लाह का हुक्म ये जो पानी नहर का न पीना है न जो पिएगा हम में से नहीं, तो बात तो सादा सी आ गई ना, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, मखलूक के जिम्मे तामील है। अब बेशुमार पहलुओं पर आप बात कर सकते हैं, इस तामील में हमारी एहतियाज पूरी हो रही है, इस तामील से हम फायदा हासिल कर रहे हैं, इस तामील से हमारी दुनिया की जो तामील है वो हो रही है, इस तामील से हम उखरवी जिंदगी यानी मकसद हयात पर बेशुमार पहलू। लेकिन इन पहलुओं से भी जब बाला होकर आप देखेंगे तो सादा सी बात है, अल्लाह का हुक्म है और ये उसका करम है कि उसने तामील हुक्म को हमें पैदा फरमाया। बजाय ये देखने के कि ये मामला मैं कर पाऊं, इसको इख्तियार कर सकूं, इसे छोड़ दूं, मुझे पसंद आ रहा है या दिल में कुछ और मामला है, नहीं, ये बड़ी सी अमूमी सी बात हो जाती है। लेकिन जो बुनियादी बात है वो तामील हुक्म है, यही बंदगी का तकाजा है कि गैर मशरूत इतात। तो फरमाया जो उसमें से पानी पी लेगा वो मेरे साथियों में से नहीं, वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग्तरफ गुरफतन बियदे। फरमाया और जो कोई उसे नहीं चखेगा, वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी, जो नहीं चखेगा वो मेरा साथी होगा सिवाय उसके, इल्ला मन इग्तरफ गुरफतन बियदे। फरमाया सिवाय उसके कि कोई अपने हाथ से चुल्लू भर पानी पी ले। अब यहां मुफस्सिरीन कराम ये बयान फरमाते हैं कि जब ये मौका आया तो इस मौके पर पानी है, गर्मी है, प्यास है, लेकिन अल्लाह करीम का हुक्म तो वादे बयान फरमा दिया गया था, उसके हुक्म पर ही तो जमा हुए, उसके हुक्म पर ही तो सरबरा मुकर्रर हुआ, उसके नबी ही ने तो ये सारी तरबियत फरमाई। तो जहां इस आजमाइश की बात आई तो वहां की नजाकत भी बयान फरमा देगी कि अब अमल नहीं करेगा तो हम में से नहीं होगा। फिर इस आजमाइश में जो बुनियादी जरूरत है, शदीद प्यास है, उसमें आपको इतनी खुराक मुयस्सर आ जाए, भले प्यास से मुतल्लिक बात हो कि जो वजूद को तकवीयत दे दे और हयात का सबब हो। तो यहां भी जो फरमाएगा कि कुछ हाथ में पानी, जैसे ये जो फरमाएगा ना कि हाथ से चुल्लू भर के या जाने हाथ से पानी जो है, तो अब जिसे इतना पानी नसीब हो जाए कि उसे एक वक्ती जो है सहारा मिल जाता है। फशारे वो मिनहु इल्ला क़लीलन मिनहुम, फिर उनमें से सवाए थोड़े लोगों के सब ने उससे पी लिया। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि जिन्होंने हुक्म नहीं माना, पानी पर गिर पड़े और ऐसे लेट कर पूरा मुंह लगाकर वो पानी पी रहे हैं, और वो फरमाते हैं कि जितना उन्होंने पानी पिया उतनी प्यास बढ़ती गई। अल्लाह पानी तो प्यास बुझाने का सबब है ना। और जिन्हें ये ऐसा नसीब हुआ, जिनका ईमान ऐसा था कि उन्होंने कोई चुल्लू भर से पानी पिया, उनकी प्यास भी बुझी, तामील हुक्म भी नसीब हुआ। जिन्होंने तामील हुक्म से तजावज किया वो जितना पानी पी रहे हैं उतनी प्यास बढ़ रही है, शिद्दत प्यास बढ़ रही है, पानी पी रहे हैं, पी पी के पानी जो है उनके पेट फूल गए, वो तो चलने के काबिल ना रहे। और जिन्होंने तामील हुक्म की उनकी प्यास भी बुझी। यहां इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, हम हुक्म उसकी नौइयत और अपने हालात तक देखते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये हुक्म रब्बुल आलमीन का है। हम जिन असबाब को या जिस जिंदगी या जिस गिर्दोपेश को देख रहे हैं उसका मालिक भी तो वही है, तो होना तो वो है जो उसको मंजूर है, और उसको मंजूर है कि तंगी आए, तो फिर तंगी का आना जो है ये बेहतर है। अल्लाह से आसानी मांगनी चाहिए, अल्लाह से आसाइश मांगनी चाहिए, अल्लाह करीम से मसाइल से निजात मांगनी चाहिए, यकीनी तौर पर यह बात बेहतर है। लेकिन जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, कोई शय ऐसी नहीं है कि अल्लाह करीम के दस्ते कुदरत से बाहर। तो जिन्होंने इस तकलीफ में तामील हुक्म की उन्हें दुनिया की भी सहूलत मिली, यानी उनकी प्यास बुझी, और जिन्होंने दुनिया के सबब ही को चाहा वो सबब हो के भी उनका मसला हल न हो सका। तो ये बात समझने की है। तो थोड़े लोग रह गए, अक्सरियत ने वहां से पानी पी लिया। फलम्मा जावज़हु वल्लज़ीना आमनू मअहु, फरमाया फिर जब वो यानी हजरत तालूत और ईमान वाले लोग जो उनके साथ थे उसके पार उतरे। अब मामला तो सिर्फ पानी या नहर तक तो नहीं था, बात तो उस जहाज की थी जो कुफार के मुकाबले जाना था, और लश्कर है, बड़े जालिम हैं, बेशुमार अशरे से लहस हैं, तो बात तो यही नहीं खत्म हुई, तो तादाद तो फिर कम होगी। पहले कुछ सारी आबादी तो साथ चली नहीं होगी, लेकिन जब नहर तक पहुंचने की बात आई तो अक्सरियत ने पानी पिया तो वो तो चलने काबल ना रहे, तो फिर नहर में जो उतरे थे उनकी तादाद कम होगी। तो वो जब पार पहुंचे तो पार मामला फिर एक पेश आया, قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، فرمایا جو ان کے ساتھ تھے اس کے پار اترے تو وہ کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رہی۔ پیچھے معاملہ کیا ہے کہ سفر ہے، تکلیف ہے، کٹھن راستہ ہے، پھر ساری پیاس سے گزرتے ہوئے کتنی تعداد، کثیر تعداد تو نہر پر رہ گئے، اب جب سامنے پہنچے ہیں تو میدان کارزار ہے، جنگ کے حالات ہیں، ایک جری لشکر سامنے ہے، مقابل ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہے، اسلحے سے بھی وہ لیس زیادہ ہیں، اور ان کی جو تاریخی حوالے ہیں اس میں بھی ان کی بے شمار قوت جو ہے وہ بیان ملتی ہے، تو یہاں تعداد تھوڑی ہے۔ تو جب وہاں پہنچے تو پھر اس تعداد یا اس حالات کو دیکھتے ہوئے پھر ایک آواز اٹھی کہ آج تو ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس سے بھاگا کیسے جا سکتا ہے، چونکہ کوئی فریق ایک یہ کہے میدان جنگ میں کہ آج ہمارے لڑنے کے لیے طبیعت نہیں ہے یا موڈ نہیں ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مقابل ہے وہ کہ ہاں آج آپ کی سہولت کو دیکھتے ہیں، کھڑے تو جنگ کرنے کے لیے۔ ایسے نازک موقع پر یہ کیفیت یا یہ بات پورے لشکر کو جو ہے کمزوری کا سبب بن جاتی ہے، اور یہ کمزوری میدان کارزار میں شکست کا سبب ہو جاتی ہے، نقصان کا سبب ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب وہ کم تعداد پار پہنچی، تو جب پار پہنچی تو حالات کو دیکھ کر ایسے کمزور دل ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے تھے، انہوں نے کہا، اب یہاں ایک اور جو ہے موضوع سامنے آتا ہے، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله والله مع الصابرین، انہوں نے کیا کہا، کہتے ہیں کتنی تھوڑی جماعتوں نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غلبہ پایا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ قال الذین یظنون انہم ملاقوا اللہ، جنہیں اللہ سے ملاقات پر یقین تھا، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ اس آیت تک پہنچتے ہوئے جو حق پر لوگ ہیں ان کے تین حصے ہمارے سامنے آ گئے۔ اب جو آبادی سے جمع ہو کر نہر تک پہنچے وہ بھی اقرار کر رہے ہیں، پھر جنہوں نے چلو بھر پانی پیا اور اگلے میدان تک پہنچے اور وہاں آ کر پھر قلیل تعداد کو دیکھتے ہوئے یا کمزوری کے سبب کرتے ہوئے جنگ سے گریز آئے، وہ بھی ہیں ہمارے سامنے، دوسرا حصہ ہوگا۔ تیسرا حصہ جو فرمایا جا رہا ہے وہ ہیں جنہیں اللہ پر ملاقات کا یقین ہے، اس کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ اب اس حاضری کو آپ میدان کارزار میں شہادت کی نظر سے دیکھیں، یا جب بھی موت واقع ہو تو اس کے حضور جا پیش ہونا اس نظر سے دیکھیں، ہر دو پہر میں اللہ کے روبرو ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ایمان اتنا مضبوط ہو۔ تو جب عام حصوں میں آپ اسے تقسیم کریں گے، ایک حصہ آ جائے گا ناقص، کہ دعوی تو ہے لیکن ناقص ہے، کہ مان رہی ہیں اس پر اعتبار نہیں کر رہے، ساتھ عمل نہیں جڑا ہوا۔ اور دوسرا حصہ جو ہے اس سے آگے آتا ہے، وہ مکمل تو ہے لیکن اس درجے کا اکمل نہیں، کامل نہیں ہے، کہ وہ جو مان رہے ہیں اس کے ساتھ عمل بھی پہنچے، یعنی دوسرے درجے میں آ کر جنہوں نے پانی سے نکلے میدان کارزار میں پہنچے، یہ دوسرے درجے کے آگے۔ پھر تیسرا درجہ ان کا ہے जिन्हें अल्लाह करीम के रूबरू होने का यकीन है उन्हें इससे कोई गरज नहीं कि मारे जाएंगे या बच जाएंगे, वजूद सलामत रहेगा या उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। उन्हें तामीले हुक्म दरकार है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, हम अल्लाह के हुक्म पर कायम रहें। उन्हें इससे कोई गरज नहीं है कि इस तामील में मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या होगा, मैं बचता हूँ या नहीं बचता। यहाँ जब बात पहुँचती है ना, तो फिर जिन्हें यकीन है उन उसी जमात ने तारीख का हवाला दिया और कहने लगे कि कितनी ही थोड़ी जमातों ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गलबा पाया। बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के मिलने का यकीन है, जान हथेली पर रखती, कोई गरज नहीं, बचती हैं नहीं बचते, नहीं बचेंगे शहीद हो जाएंगे, बच जाएंगे गाजी होंगे, नहीं बचेंगे तो भी उसी का कहलाएंगे, बच आएंगे तो भी उसी का कहलाएंगे, हर दो सूरत में उसके हजूर पेश होना। अब इस तीसरे दर्जे को आप गौर फरमाएं और फिर हालात का जायजा लें, आज के हालात का जायजा लें। दावा, उस दावे के साथ जो अमल की सूरत है उसे देखें, मैदान में जो पहुंच चुके हैं उन्हें देखें और फिर उन्हें देखें कि जो अल्लाह पर यकीन रखें। ये कुरान करीम में मुख्तलिफ वाक्यात भी बयान फरमाए गए हैं, आयात करीमा भी निशानदेही करती हैं और यही शहादत हमें जो दुनिया की तारीख है इसमें भी मिलती है कि ये अल्लाह करीम का निज़ाम है कि जब बुराई बढ़ती है तो फिर वह ऐसे लोग पैदा फरमा देता है कि जो उसका मुकाबला करते हैं और फिर अच्छाई जो है, नेकी जो है और इस्लाम जो है वो फिर गालिब आता है। तो आज जो चीज़ तकलीफ दे महसूस होती है वो ये होती है कि अगर इन तीन में से भी बंदा न रहे, यानी पहला जो है वो रहा, दूसरा जिन्होंने हालात तक पहुंचे, फिर वो उस कमजोरी को देखते हुए कि आज ताकत नहीं है मुकाबले की, तीसरा वो चंद लोग जिन्होंने अल्लाह करीम की पर भरोसा करते हुए मुकाबले को खड़े हो। आज जब हम अपने गिर्दो पेश देखते हैं ना, तो ये दो हिस्से तो मिल रहे हैं हमें अपने माशरे में, ये तीसरा हिस्सा नहीं मिल रहा। तो अल्लाह करीम माफ फरमाए, क्योंकि कुरान करीम के आयात वाकयात और इसे देखे ना, अगर ये तीसरा हिस्सा सलामत न रहे तो फिर कौमें बदल जाती हैं, रब्बे करीम फिर और लोग पैदा कर देते हैं, पहले दावेदार जो हैं फिर वो नहीं रहते, फिर कोई और लोग पैदा हो जाते हैं जो हक का अलम बुलंद करते हैं, क्योंकि अल्लाह करीम तो मोहताज नहीं, मखलूक मोहताज। आज हमें इस फिक्र की जरूरत है कि क्या हमारे अंदर कोई चंद ऐसे बंदे नहीं रहे जो अच्छाई की या इस बुराई की तमीज में मजबूत खड़े हों। और अल्लाह माफ फरमाए, जब गिर्दो पेश देखते हैं तो अल्फाज नहीं मिलते कि इस कैफियत को क्या बयान किया जाए। हर तरफ हम देखते हैं तखरीब है, खराबी है, फसाद है, लेकिन जब तामीर की तरफ देखते हैं तो कुछ समझ नहीं आती। तो जरूरी है कि ये तजिया सिर्फ देखने तक न रहे, इसे अमल में लाया जाए, अपने तई जो हो सकता है अच्छाई जो है उसे इख्तियार किया जाए, अपना किरदार अदा किया जाए। और ये क्या फरमा रहे हैं, उनके कलाम को रब्बे कायनात ने कलाम जाती का हिस्सा बनाया, जिन्हें अल्लाह के मिलने का यकीन है। ये बात तो उनकी है ना, अल्लाह के मिलने को जिनकी यकीन है, ये देखे ना, ये उनकी कैफियत रिश्ता बयान फरमाया, قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله। अब ये कैफियत है जिन लोगों की, वो क्या कह रहे हैं, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरतिन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु अस्साबिरीन। उनके अल्फाज को कुरान करीम ने बयान फरमाया, कलाम जाती ने ये शर्फ बख्शा कि वो जो बात कर रहे हैं उस बात पर उन्हें ये शर्फ नसीब हुआ कि कुरान करीम में बयान फरमाई गई। कितनी ही कितनी अजमत है। तो ये जो बुनियाद है, ये यकीन है, ये कैफियत ईमान सिर्फ दावे का नाम नहीं है, उसके साथ शहादत है आमाल की। तो जब आमाल और हो, दावा और हो, तो फिर आप देखें इन तीन हिस्सों में फिर किस हिस्से में बंदा गिना जाएगा। बिइज़्निल्लाह, ये गलबा भी इस तरह नहीं है कि अल्लाह की जात पर यकीन है और हमने अपनी कुव्वत बाजू से गलबा लेना नहीं। बिइज़्निल्लाह ये अल्लाह के हुक्म से है। जो थोड़ी जमातें भी जब फाते हुई कैसी हुई, उन्होंने भरोसा अल्लाह पर किया, अल्लाह ने उन्हें फतह अता फरमाई। तो आज की खराबी को देखकर हम ये परेशानी लेकर बैठ जाएं कि क्या होगा मेरे एक के काम करने से, किसी एक जमात के काम करने, ये नहीं बात। बिइज़्निल्लाह ये ना बोला करें। जो भी होना है अल्लाह के हुक्म से होना है, तुम्हारे जिम्मे अपनी नीयत का इख्तियार करना है, तुम किस नीयत के मालिक हो, तुम्हारे आमाल कैसे हैं। तो अल्लाह करीम हमें तौफीक अमल अता फरमाए। फिर इरशाद फरमाए वल्लाहु मुअस्साबिरीन। अब अल्लाह का साथ जो है उसके लिए एक वस्फ बयान फरमाया गया और ये मुतअद्दिद जगह ये हिस्से बयान फरमाए गए। यहां भी इतने नाजुक हिस्से पर भी, नाजुक मौके पर भी ये फरमाया गया कि वल्लाहु मुअस्साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। अब साबिर कौन है? साबिर है, जब आप इसका लफ्जी मानी देखेंगे तो बड़ा मजबूत, रोक लेना अपने आप को, रुक जाना, यानी हुक्म इलाही पर अपने आप को मजबूत, मजबूती से रोक लेना, कोई कमी बेशी ना आए। अमूमन सबर के मानों में लिया जाता है कि कोई दुनिया की तकलीफ आ गई, कहीं हादसा हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो उस पर किसी ने ताश तशनी नहीं की, शोर शराबा नहीं किया, तो यही सबर है। ये एक सबर का हिस्सा है, कुली मानों में ये हिस्सा नहीं आता, क्योंकि साबिर वही होगा जो अल्लाह के हुक्म पर रुक जाए। कुली मानों में यही कैफियत आएगी। अब जो वो मामला दुनिया के मसाइल की तरफ या मसायब की तरफ आ जाए और बात है, वही मामला जब आप सही और गलत पर कायम रहने पर आ जाए और बात है, लेकिन पूरी बात तभी होगी कि अल्लाह करीम के हुक्म पर रुक जाए बंदा। तो जब ये वस्फ हो अल्लाह के हुक्म पर कायम होगा तो उसे फिर अल्लाह की मैयत नसीब होती है। बिलअमूम जो मैयत है वो हर शय को हासिल है, हर जर्रे को हासिल है। बिलअमूम अल्लाह की इबादत हर जर्रा कर रहा है, चाहे वो हमारे नजदीक जानदार है या हमारे नजदीक बेजान है, उसकी उसके वजूद का सबब भी अल्लाह की इबादत है। तो बिलअमूम मैयत इसलिए कि अल्लाह करीम से कोई शय दूर नहीं, अल्लाह करीम ने हर शय को अहाता कर रखा है, कोई शय उससे बईद नहीं है। लेकिन जब नूरी ईमान से इस माइयत का हसूल नसीब होता है ना, वो उसकी जात के साथ, लेकिन जब किसी को मुखातिब, यानी जैसे यहां बासियत बंदे मोमिन साबिर, ये कैफियत है, ये वस्फ जब उसे नसीब होता है, फिर उसे अल्लाह की मैयत जो नसीब होती है वो सिर्फ जाती उस पहलुओं से नहीं है जो हर जर्रे को है, फिर उसमें कुदरत कामला का इजहार भी आ जाता है कि अगर मामला यहां दुनिया के मामलात या मसाइल का है तो वो भी तो असबाब है आलम इस आबो गिल में, ये सबब मालिक तो अल्लाह के साथ है, तो वो मुसबिबुल असबाब है, तो फिर उसकी जो मदद नसीब होती है तो वो फतह और नुसरत का सबब बनती है। तो बात तादाद की या अदद की नहीं है, बात उस अकीदे की है, बात इस मानने की है, बात इस हक पर कायम रहने की है। और साबिर ये नहीं है कि वो एक मामला पे शायद उस पर डट कर खड़ा हो गया। दीन इस्लाम जाब्ता है, हयात है, जिंदगी के कितने पहलू आप के उसके औराक खोल लें, हर सवाल का जवाब आपको दे रहा है। तो जब दीन पर कायम होंगे तो अल्लाह करीम की मदद आएगी, जब अल्लाह करीम की मदद आएगी तो काफरों मुशरक के दरों पर ठोकर नहीं खाओगे। और अगर कोई मुसलमान नहीं है उसे भी एहसास होगा कि मुझे भी अगर तहफ्फुज कहीं मुयस्सर आ सकता है तो अल्लाह के मानने वालों के पास आ सकता है। लेकिन अगर अल्लाह के मानने वाले अपने दावे में सच्चे न रहें तो जहां वो मुहाफिज हैं वजाय उस मकाम के वो फिर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो अल्लाह ही का इनकार कर रहे हैं उनसे ये मदद मांग रहे हैं। तो क्या आज हमारे मुआशरे में ऐसा नहीं हो रहा? आज हम अपने मुल्क या अपनी कौम को देखें तो ऐसी सूरत हाल पेश नहीं है? आज हम फख्र करते हैं कि हम कर्ज लेकर आएंगे, और अगर कर्ज किसी को मिल जाए वो फख्र करता है। अजीब बात है कि मकरूज होना उसको हमने फख्र के दर्जे तक पहुंचा दिया। ये बेअमली नहीं है तो मौजूद सामी ने करम और क्या है? ये इनतात नहीं है, और इनतात किस भला का नाम है? तो इन असबाब को आप देखें तो वो जो बुनियाद है कि अल्लाह के हजूर हमने पेश नहीं होना, यही मसला है। और ईमान बिल आखिरा अलग बयान फरमाया गया, ईमान बिल गैब में ईमान बिल आखिरा दाखिल है। हमने आखिरत देखी नहीं, रब कायनात की जात को नहीं देखा, उसकी सिफात जो कुरान करीम में जहां जितना हदीस मुबारक में बयान फरमाया उतना हुक्म है कि ये मानो उससे आगे सोचो नहीं, सोचोगे तो भटक जाओगे। उसकी जात लामादूद है। तो गैब में तो सबसे बड़ा गैब रब कायनात की जात है। इसी तरह जब ईमान गैब फरमाया गया तो आखिरत भी हमारे रूबरू तो नहीं है, जाहिर होगी तो जाहिर होगी, आज तो गैब के मानों में जाएगी। तो ईमान बिल गैब में ईमान बिल आखरा दाखिल है। अल्लाह ने फिर ईमान बिल आखरा अलग से भी इरशाद फरमा दिया, इससे समझ आती है कि कितनी अहमियत है। तो ईमान बिल आखरा पर जब यकीन नसीब हो तो क्या अल्लाह के रूबरू नहीं हाजिर होना है? रूबरू तो जो हिसाब किताब को उसके रूबरू होंगे तो मामला तो नाजुक होता जाएगा ना। आज जो उसके रूबरू है, आज मौका है, आज फुर्सत है, हक्को बातल बयान है, और हम अपनी जिंदगी के जो है वो कदम ब कदम उठा रहे हैं, इख्तिताम को जा रहे हैं, एक मुसाफिर सफर में है। तो जब बात इख्तिताम को पहुंचेगी, बात रोजे माशर को पहुंचेगी, तो क्या मैं और आज ये हमारे ईमान का तकाज़ा है कि हम ये ना समझें कि हम अल्लाह के रूबरू होंगे? तो जिन्हें अल्लाह के रूबरू होने का यकीन है उन्हें तो जिंदगी और मौत की कोई परवाह नहीं कि जिंदा रहे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी राह में मौत आ गई तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो तादाद की बातें रह गई, बात वजूदी इस तादाद से भी आगे चली गई कि भूखे प्यासे हैं कोई रही नहीं, अल्लाह का हुक्म है उससे मिलना है। तो उसके हुक्म पर वो जब खड़े हुए तो फिर समझ आती है ना, वल्लाहु अस्साबिरीन। ये वस्फ हमें तलाश करने की जरूरत है, क्या हम में है? क्या अल्लाह के हुक्म पर हम कायम हैं? हम तो साबिर उसी को कहते हैं ना जी, कोई मसला पेश आया जी, नहीं रोया नहीं जी, बड़ा खामोश रहा, बड़ा हौसला किया। आमाल देखो, अगर हक पर चल रहा है तो साबिर है, हक से तजावज छोड़ रहा है तो साबिर है, उसकी जिंदगी इत्तबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़य्यन है तो साबिर है। और ये वस्फ नसीब हो तो फिर वो हिस्सा नसीब होता है कि अल्लाह की मैयत नसीब होती है। इसीलिए फरमाया वल्लाहु मुस्ताबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हैं। अल्लाह करीम ये कैफियत और हाल हमें अता फरमाए, माफ फरमाए, तौफीक अमल नसीब हो। وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پھر انہوں نے اپنے اللہ سے جو دعا کی، قرآن کریم نے وہ دعا بیان فرمائی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل آئے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، یعنی جب افواج مقابل ہوئے، آمنے سامنے ہوئے، تو جنہیں اللہ کریم نے صبر عطا فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا للقوم الكافرین۔ تو انہوں نے عرض کی، اے ہمارے پروردگار، ربنا، اے ہمارے پروردگار، کیا خوبصورتی ہے ربنا، یہ نصیب ہو کہ اپنے اللہ کو بندہ ایسے پکارے ربنا، ہر شے بہیت ہوگی، اللہ کریم کی ذات پہلے آ گئی، چونکہ یہ محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس نے عطا فرمانا ہے، इसकी जो ये जो मोहताज है इसकी मोहताजियों का मुदावा अल्लाह के पास, रब्बाना ये कैफियत नसीब हो जाए, हर शह बईद हो जाए। हम तो पढ़ते हैं अरबी पढ़ते हैं, कलाम जाती है, फिर इसके तराजम पढ़ते हैं, हमारे आमाल में हमें समझ नहीं आ रही होती कि रब्बाना ये क्या खूबसूरत कला। रब्बाना अफ़रिग़ अलैना सब्रं वसब्बित अक़दामना वंसुरना लिल्क़ौमिल काफिरीन। तर्जमा अर्ज करता हूँ और इसकी तफसीर इंशाल्लाह अगले बयान में अर्ज करूंगा, इसलिए कि अब वक्त थोड़ा है, इसकी तफसीर बयान नहीं कर पाऊंगा और ये ऐसी कैफियत और हाल है कि थोड़ा सा इसका जो है तफसीली गुजारशात पेश की जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। तो फरमाया तो उन्होंने कहा, ऐ हमारे परवरदिगार हम पर सबर नाजल फरमाइए, जिसमें ये वस्फ है उसे माहियत नसीब हो रही। अब यहां गौर फरमाइए, ये वस्फ भी जाती नहीं है, अल्लाह की अता है। तो बुनियाद फिर चली गई पहले कि जिसे अल्लाह के रूबरू होने का यकीन, तो क्या अर्ज करते हैं, सबर नाजल फरमाइए, यानी अता अल्लाह ने फरमाना है। ये नहीं हाँ मेरे पास बड़ा सबर है, मैं तो खुद अपना नहीं, मेरे पास जो है वो मेरा कहाँ होगा, तो मैं तो खुद उसका हूं जो मेरा मालिक है, मेरी तो अपनी हैसियत नहीं, तो औसाफ को मैं जाती कैसे कहूं, वो भी तो उसकी देन है। और वसब्बित अकदामाना और हमारे कदम जमाए रखिए, उसने फैसला दिया, जो हुक्म दिया उस पर जो फैसला नसीब हुआ, अब मुतजलजल ना हो। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन और काफरों की कौम पर हमारी मदद फरमाइए, यानी हम गालिब आएं और उन्हें शिकस्त। अल्लाह करीम तौफीक अमल अता फरमाए। याद रखिएगा, जब भी दीन यानी हक के मुकाबले ना हक आएगा तो हक ही गालिब आएगा, ना हक गालिब नहीं आ सकता। अल्लाह करीम तौफीक अमल अता फरमाए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।